SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। भारत में हिंदुओं के धार्मिक त्यौहार कुंभ में होने वाले दर्दनाक हादसों का सिलसिला जारी है। हादसों की इस कड़ी में एक नया हादसा शनिवार रात राजधानी के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुआ। करीब 9:30 बजे मची भगदड़ में 18 लोगों की मृत्यु हो गई। इनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। 25 से अधिक लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कई खबरों के मुताबिक इस हादसे की वजह 3 ट्रेनों के लेट होने से भीड़ का जुटना और कई घंटे देरी से पहुंच रही रेलगाड़ियों का प्लेटफॉर्म बदला जाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसद में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई मंत्रियों और विपक्षी नेताओं ने हादसे पर दुख और मृतकों के परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। विपक्षी दलों ने हादसे के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर कुंभ की बद इंतजामी का आरोप लगाते हुए श्री वैष्णव के इस्तीफे की मांग की।
देश के रेल मंत्री अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में पूरी तरह से विफल है। इस देश के रेल मंत्री सिर्फ और सिर्फ रील बनाने में मशगूल है। इस देश के रेल मंत्री इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ मौत के आंकड़े छुपाने में जुटे हुए थे। इस देश के रेल मंत्री बजाय जिम्मेदारी उठाने के, हाथ उठा के कहने के, मुझसे गलती हुई, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, वो निर्लज्जता पे उतर आए हैं, वो विभत्स चीजें कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि सब ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रेन चल रही है। अश्विनी वैष्णव जी को अपने पद पर बने रहने का एक मिनट की नैतिकता नहीं है।
रेल हादसे की जांच के लिए उत्तर रेलवे के 2 बड़े अधिकारियों की जांच कमेटी बनाई गई है, जिसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इस हादसे से पहले 29 जनवरी को कुंभ में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 30 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस कुंभ में 4 बार 19 जनवरी, 30 जनवरी, 7 फरवरी और 15 फरवरी को आग भी लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया अमेरिकी दौरे को विदेश मंत्रालय ने सार्थक और उत्पादक यात्रा करार दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड, टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क और उद्यमी विवेक रामास्वामी सहित कई प्रमुख हस्तियों से चर्चा की बात करते हुए दौरे की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।
For the 21st century, this compact stands for catalyzing opportunities in military partnership, accelerated commerce and technology. In the area of trade and investment, for instance, the leaders launched Mission 500, aiming to more than double total two-way trade to $500 billion by 2030. The two leaders also announced plans to negotiate the first tranche of a mutually beneficial multi-sector bilateral trade agreement by the fall of 2025.
गैर कानूनी रूप से अमेरिका में रह रहे अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ियों में भारत भेजे जाने के सवाल पर श्री मिस्री ने सीधा जवाब न देते हुए कुछ यूं कहा.
Yes, it did figure during the discussions today. The Prime Minister said, as I think he mentioned during the press conference as well, and, during the discussions also he said that India has made its stand very clear that if there are illegal immigrants proven to be Indian citizens in any country abroad, we will take them back. But he did emphasize, and again, I think he referred to this in his remarks at the press conference, but even in the during the discussions, he did emphasize that the return of illegal immigrants is not the end of the story. There is an ecosystem that thrives on this racket and that promotes and enables this racket. And it is the responsibility of both countries to do something about this.
इस बीच अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे 116 और भारतीयों को शनिवार देर रात भारत भेज दिया गया. अमेरिकी एयरफोर्स के विमान में इस बार महिलाओं बच्चों को छोड़ सभी पुरुषों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर विमान में बिठाया गया था. शनिवार को भेजे गए लोगों में पंजाब से 65, हरियाणा से 33, गुजरात से 8, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान से 2-2 और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से 1-1 व्यक्ति शामिल है. इनमें अधिकांश 18 से 30 साल की उम्र के हैं. रविवार रात भी 112 अप्रवासी भारतीयों को वापस भेजा गया. इलॉन मस्क के नेतृत्व वाले डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के $750 मिलियन से अधिक की अंतर्राष्ट्रीय सहायता को रद्द करने की घोषणा की है. श्री मस्क ने अपनी ट्वीट में लिखा कि चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया सुदृढ़ीकरण के लिए कंसोर्टियम को $486 मिलियन, जिसमें मॉल्डोवा में समावेशी और भागीदारी पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया के लिए $22 मिलियन और भारत में मतदाता मतदान के लिए $21 मिलियन शामिल हैं दी गई थी. श्री मस्क ने इस निर्णय को ट्रंप प्रशासन द्वारा सरकारी खर्च को कम करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा बताया. लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा प्रेरित भारत की चुनावी प्रक्रिया में भारी हस्तक्षेप बता आरोप लगा रही है. भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में गांधी परिवार, जाने माने अमेरिकी निवेशक और परोपकारी जॉर्ज सोरोस और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी का नाम घसीटते हुए लिखा कि 2012 में SY कुरैशी के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने IFES यानी इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे. यह संगठन जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा है, जिसे प्रमुख रूप से USAID द्वारा वित्त पोषित किया जाता है. श्री कुरैशी ने ट्वीट करते हुए बताया कि कई अन्य एजेंसियों और चुनाव प्रबंधन निकायों के अलावा IFES के साथ भी समझौता हुआ था, ताकि इच्छुक देशों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रशिक्षण और संसाधन केंद्र IIIDEM में प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा सके, जो उस समय बहुत नया था. समझौते में कोई वित्त पोषण या वित्त पोषण का वादा भी शामिल नहीं था. समझौते में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किसी भी पक्ष पर किसी भी तरह का कोई वित्तीय और कानूनी दायित्व नहीं होगा. इस समझौते के संबंध में किसी भी तरह के धन का उल्लेख पूरी तरह से गलत और दुर्भावनापूर्ण है. महाराष्ट्र की भाजपा शासित सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों के खिलाफ कानून बनाने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक संजय वर्मा की अध्यक्षता में 7-सदस्यीय कमेटी बनाई है. इसके पैनल में महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मामले, कानून एवं न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, विशेष सहायता और गृह जैसे विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं. दूसरे राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करने के बाद कमेटी जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में शिकायतों को निपटाने के लिए सुझाव देगी. विपक्षी दलों ने राज्य सरकार के इस निर्णय की आलोचना की है. NCP शरद पवार नेता सुप्रिया सूले ने कहा कि शादी करना या प्यार करना एक व्यक्तिगत पसंद है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे। प्रधानमंत्री मोदी अभी अमेरिका से लौटे हैं और अमेरिका ने नए टैरिफ लगाए हैं जिसका असर हमारे देश पर पड़ेगा। सरकार को ऐसे मामलों और आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।